वो दिन भी आ गया था जब दीवा को व्यांश के साथ डेट पर जाना था। दीवा ने इस बारे में आर्यांश से परमिशन तो ले ली थी, लेकिन उसने सिर्फ आधे घंटे वहां पर रुकने के लिए कहा था। दीवा के पास बस वही आधे घंटे थे जब वो व्यांश को कैसे भी करके शादी के लिए मना करने पर मजबूर कर सकती थी। दीवा की व्यांश के साथ डेट शाम के वक्त थी। उससे पहले वो हमेशा की तरह हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर दीवा ने देखा कि सौरव बजाज का आज डिस्चार्ज हो रहा था। इतने दिनों में सौरव ने अपनी तरफ से दीवा के साथ काफी अच्छा बर्ताव किया था, लेकिन दीवा उससे एक दूरी बनाकर रखती थी। वो जानती थी कि अगर आर्यांश उसे मारना चाहता है तो जरूर कोई बड़ी बात रही होगी। ऐसे में वो सौरव के साथ किसी तरह का अपनापन दिखाकर आर्यांश से दुश्मनी मोल नहीं ले सकती थी। वहीं दीवा को देखते ही सौरव ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर गोयनका, थैंक यू सो मच जो आपने इतने दिनों में मुझे बिल्कुल घर जैसा एनवायरनमेंट दिया। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो आपसे पर्सनली मिलकर आपको थैंक्स कहूंगा। वो अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था, हालांकि दिखने में सौरव पहले से बेहतर नजर आ रहा था। इसमें थैंक्स कहने जैसा कुछ नहीं है मिस्टर बजाज, ये तो मेरा फर्ज था। आप ठीक हो रहे हैं और आपको यहाँ अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दीवा ने एक फॉर्मल सा जवाब दिया। दीवा के चेहरे पर एक राहत का भाव था, क्योंकि सौरव बजाज यहाँ से डिस्चार्ज ले रहा था। उसे अभी भी डर लगता था कि कहीं आर्यांश आकर सौरव को नुकसान न पहुंचा दे और फिर उसका पूरा ब्लेम हॉस्पिटल पर न डाल दे। सौरव वहां से जा रहा था तो उसकी मुसीबतें कम हो रही थीं। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे पीछे से प्रियंक की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर गोयनका, हम फिर मिल रहे हैं, प्रियंक ने आगे आते हुए कहा। दीवा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। उसे इस तरह चुपचाप पीछे से आकर डराने वाले लोगों से सख्त चिढ़ थी। मैं बस डैड के डिस्चार्ज के लिए आया था, प्रियंक ने सफाई देते हुए कहा। हाँ, आप लोग आपस में बात कीजिए, मुझे सर्जरी के लिए जाना है, दीवा ने उन्हें टालने के लिए कहा और फिर वहां से जाने लगी। दीवा ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि पीछे से प्रियंक ने कहा, डॉक्टर गोयनका, क्या इस वीकेंड हम डिनर के लिए चल सकते हैं? उसे लगा कि दीवा हाँ कह देगी, लेकिन दीवा ने ना में सिर हिलाकर कहा, मैं मना नहीं करती, लेकिन मुझे इस वीकेंड कुछ जरूरी थीसिस लिखने हैं और अपनी बहन के हाई स्कूल भी जाना है, मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। वैसे भी वो प्रियंक के साथ जाकर आर्यांश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। ये दूसरी बार है डॉक्टर गोयनका जब आप डैड के सामने मेरे डिनर को रिजेक्ट कर रही हैं। आपने तो मेरे डैड के सामने मेरी अच्छी खासी इंसल्ट कर दी, प्रियंक ने उसे घूरते हुए कहा। सौरव ने प्रियंका साथ देते हुए कहा, डॉक्टर गोयनका, अब मान भी जाइए। सौरव का पहले से ही प्लान था कि वो दीवा को आर्यांश के खिलाफ इस्तेमाल करे। दीवा फंस गई थी। एक बात तो तय थी कि उसके हाँ या ना दोनों पर ही कोई ना कोई अनहोनी होना तय था। उसने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपको टाइम बता दूंगी। दीवा को उन्हें टालने के लिए यही सही लगा। उसने हाँ भी नहीं किया तो साफ तौर पर इनकार भी नहीं। उसके बाद वो तुरंत वहां से निकल गई थी। दीवा पूरे दिन बिजी रही। दीवा को व्यांश के साथ जहां डेट पर जाना था वो जगह हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने वहीं से तैयार होकर जाने का सोचा। दीवा बाथरूम में गई और उसने एक पुराने स्टाइल का अजीब सा ड्रेस पहना। उसने अपने चेहरे पर मेकअप से निशान बना लिए थे। वो खुद को बदसूरत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें नहीं देखा तो तुमने भी मुझे नहीं देखा होगा। उम्मीद है कि मुझे इस तरह देखकर तुम शादी के लिए मना कर दोगे, व्यांश अग्रवाल। वैसे भी पुराने टाइप के कपड़े पहनने वाली अजीब लड़की को कोई भी शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा। तुम जैसे स्टेटस के लोग तो बिल्कुल नहीं, दीवा ने खुद को आईने में देखकर कहा। फिर उसने एक मोटा सा चश्मा लगा लिया था, वो भी पुराने स्टाइल का ही था। दीवा ने अपने बालों को अजीब तरह से फैलाकर खोल लिया था। यकीन नहीं आ रहा कि मेकअप से इंसान की शख्सियत को इतना बदला जा सकता है। तो फिर तुमसे मिलने जाया जाए, व्यांश अग्रवाल, दीवा ने खुद को देखकर हंसते हुए कहा। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन आज उसे खुद को इस तरह दिखाना पड़ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ आर्यांश की वजह से। तैयार होने के बाद दीवा बाथरूम से बाहर पहुंची और सबकी नजरों से छुपाते हुए गाड़ी में आ गई थी। वो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसके पास समय का कॉल आया। दीवा ने कॉल रिसीव किया तो सामने से समय ने कहा, मैंने तुम्हें इनाया के बारे में बताने के लिए कॉल किया था, वो अब ठीक है और साथ ही उसका मूड भी अब अच्छा रहने लगा है। ये तो अच्छी बात है ना, और सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, थैंक यू सो मच समय। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, दीवा ने जवाब दिया और फिर कॉल काट दिया था। दीवा ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। रेस्टोरेंट में एंटर करते ही उसे कोने की सीट पर एक लड़का दिखाई दिया। वो दिखने में हैंडसम था। उसने अपने ब्लेजर को पीछे टेबल पर टांग रखा था। फॉर्मल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स में भी वो अच्छा दिख रहा था। जरूर वही होगा, दीवा ने मन ही मन कहा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। उसके पास आते ही दीवा ने अपना चश्मा नाक पर चढ़ाते हुए कहा, मिस्टर अग्रवाल। व्यांज ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। ये वो दीवा नहीं थी जो उसने फोटो में देखी थी। उसका रंग गहरा लग रहा था और चेहरे पर निशान भी थे। उसने काफी देर गौर से दीवा को देखा, तभी उसे पहचाना। व्यांज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और दीवा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, आइए मिस गोयनका। दीवा ने उसकी तरफ एटीट्यूड से देखा और फिर काफी बदतमीजी से कुर्सी पर पैर चढ़ाते हुए बैठ गई थी। उसने व्यांज की तरफ देखकर मुंह बनाया और फिर बोली, नाम क्या है तुम्हारा? इस वक्त उसके मन में यही चल रहा था कि जितना वो आर्यांश को नापसंद करती है, उतना ही वो लड़का उसे नापसंद करेगा। वो बिल्कुल आर्यांश की नकल करने की कोशिश कर रही थी। खुद को ओवर कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड में दिखाते हुए वो उसे बदतमीजी कर रही थी। व्यांश अग्रवाल, व्यांश ने जवाब दिया। ओह, काफी बेसिक सा नाम है, दीवा ने गहरी सांस लेकर कहा। उसका यह बर्ताव देखकर व्यांश को झटका सा लगा। व्यांश दीवा की तरफ कॉफी का कप खिसकाते हुए नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, मैंने कैपेचिनो ऑर्डर की थी। हाँ, लेकिन मुझे कैपेचिनो पसंद नहीं है, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है, मैं कुछ और ऑर्डर कर देता हूँ, व्यांश बोला। वो किसी तरह का दिखावा नहीं कर रहा था। रहने दो, अगर तुम्हें मेरी चॉइस की इतनी फिक्र होती तो अपनी मर्जी से कुछ ऑर्डर नहीं करते। वैसे भी मेरे ज्यादा नखरे नहीं है, पी लूंगी मैं ये भी, दीवा ने मुंह बनाकर कहा और फिर कॉफी का मग उठा लिया था। दीवा कॉफी पीते हुए जानबूझकर मुंह से आवाज निकाल रही थी और ये इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। हालांकि उसे ऐसा करते देखा व्यांज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। वो खुद को कितना भी अजीब दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी ये हरकतें व्यांज को उसकी तरफ और अट्रैक्ट कर रही थी। व्यांज ने आगे पूछा, अच्छा तो मिस गोयनका, आपकी हॉबीज क्या है? मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं महंगे ब्रांड्स पहनना पसंद करती हूँ, मुझे पैसे उड़ाना पसंद है, दीवा ने जवाब दिया। आप काफी स्टेटस फॉरवर्ड हैं, व्यांश ने उसकी तारीफ में कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दीवा खुद को इस तरह दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो तो पहले ही उसकी काफी सारी फोटोज देख चुका था। दीवा ने चश्मा लगा रखा था। उसे देखकर व्यांश ने पूछा, आपकी आईसाइट वीक लगती है मिस गोयनका।
हाँ, हो गई थी, क्योंकि इतने लड़कों को जो देख लिया। तुम्हें पता है मेरे 10 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और बॉडी काउंट तो मुझे याद तक नहीं। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम पहली बार किसी डेट पर आए हो। दीवा ने खुद को कूल दिखाने की कोशिश की। व्यांश कोई बेवकूफ नहीं था जो उसे समझ ना आए कि दीवा इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही है। वो जानबूझकर खुद को ऐसा बनकर आई थी ताकि वो उसे रिजेक्ट कर दे। व्यांश ने गहरी सांस ली और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला। दीवा कुछ समझ पाती उससे पहले व्यांश ने उसका चश्मा निकाल दिया था और फिर रुमाल से उसके चेहरे को साफ करने लगा। उसके ऐसा करने पर दीवा को झटका सा लगा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले व्यांश ने उसका आधा चेहरा साफ कर दिया था। वो सब देखते हुए व्यांश की तरफ देख रही थी कि तभी व्यांश ने मेकअप से रंगा हुआ रुमाल उसके सामने रख दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मुझे हाथ लगाने की? दीवा गुस्से में चिल्लाकर बोली। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, जैसे आसपास के लोग उनकी तरफ घूर कर देखने लगे थे। दीवा ने देखा कि अचानक व्यांश के चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। उसने सिर हिलाया और उसी अंदाज में कहा, यहाँ कोई मजाक चल रहा है मिस गोयनका। दीवा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसने अपनी ब्लाइंड डेट को बुरी तरह फ्लॉप कर दिया था और साथ ही उसने व्यांश अग्रवाल जैसे इंसान को नाराज कर दिया था। उससे भी ज्यादा नाराज आर्यांश होने वाला था जब उसे ये पता चलेगा कि आज वो बुरी तरह पकड़ी गई थी। दीवा का सच व्यांश के सामने आ गया था और अब उसका डूब जाने का मन कर रहा था, लेकिन वो वहां से कहीं नहीं जा सकती थी। क्या लगता है, दीवा की इन हरकतों के बाद भी व्यांश शादी के लिए हाँ कह देगा? अगर उसने हाँ कह दिया तो सच में आर्यांश दीवा पर बहुत गुस्सा होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अगले चैप्टर पर मिलते हैं।